پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سلیمان. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو اس وقت ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89, 0800-777-89. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں.
میرا کام جو ہے وہ سوشل ایشوز کو پاکستان کے ویڈیوز کے تھرو لوگوں کو دکھانا اور ان سوشل ایشوز میں سے کچھ صحیح جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا.
ایک ملک ایک کام, ایک نظریہ اور ایک پرچم تلے بسنے والے یہ لوگ, جہاں مذہب سیاست اور لسانیت کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں, وہیں پر تعلیمی مکتبہ فکر میں فرقہ واریت کا شکار نظر آتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام سرمایہ کاری کا ذریعہ بن چکا ہے اور ان مختلف تعلیمی اداروں سے فراغت پانے والے طلباء کیا ایک سوچ, ایک روح اور ایک نظریے کے حامل ہو سکتے ہیں؟ جو ہم آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے. ذرا سوچیے.
That after facing the maniac of terrorism, we still stand united. So I think in my nation, youth is playing so much good at their end, but all they need is the right direction to give the best to their community.
Voice of America, Washington ke program, Har Dam Rawa Hai Zindagi mein, hum aaj aapki mulaqat karwa rahe hain. ایک نوجوان پاکستانی ویڈیو اور فوٹوگرافر اور سیوک پاکستان موومنٹ چینج تھرو ڈیجیٹل میڈیا انیشیٹو کے فاؤنڈر مبین الاسلام سے. ہمارے مہمان مبین الاسلام کو حال ہی میں گلوبل یوتھ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور وہ حال ہی میں نیو یارک میں ہونے والے انٹرنیشنل ینگ لیڈرز اسمبلی کے سالانہ پروگرام میں بھی ایک پاکستانی یوتھ فیلو کے طور پر شرکت کر چکے ہیں. مبین الاسلام سیوک پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں کو ان کے اہم مسائل اور ان کے حل کے بارے میں شعور و آگاہی پیدا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے استعمال کے طریقے بھی سکھاتے ہیں. بحریہ نیول یونیورسٹی اسلام آباد سے میڈیا اسٹڈیز اینڈ جرنلزم میں گریجویشن کے بعد یہاں امریکی ریاست ورجینیا کے نووا کالج میں فوٹوگرافی کے شعبے کے ایک انٹرنیشنل طالب علم مبین الاسلام پاکستان کی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر میوزک ویڈیوز کے ساتھ ساتھ تعلیم, خواتین کے حقوق, گھریلو تشدد اور دہشت گردی کے مسائل پر متعدد مختصر دستاویزی فلمیں تیار اور پوسٹ کر چکے ہیں. ہمارے مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہمارے مہمان مبین الاسلام اس وقت موجود ہیں امریکی ریاست ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم مبین الاسلام.
السلام یاسمین, کیا حال ہے آپ کے؟
میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھ رہے ہیں, لیکن جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے بارے میں اور وہاں نیٹ ورکنگ میں مصروف رہتے ہیں, لیکن آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو پڑھنے کے بعد اس میڈیا کو نوجوانوں اور خواتین کے مسائل کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے حل سامنے لانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, اور جن میں دہشت گردی کا مسئلہ بھی شامل ہے. تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ نے کب سیوک پاکستان کا آن لائن پلیٹ فارم قائم کیا, اور اس پر آپ کس طرح نوجوانوں اور عام پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, اور کس طرح یہ پلیٹ فارم عام نوجوانوں کی سوچ میں ایک مثبت اور تعمیری تبدیلی کا ذریعہ بن رہا ہے؟
بالکل, بہت شکریہ آپ کا میرا تعارف کروانے کا اور سب کو بتانے کا میرے بارے میں. البتہ میرے پاس, میں نے جب یہ شروعات کی تھی سیوک پاکستان کی, یہ تقریباً 2014 کی بات ہے, اس وقت تک مطلب میں بھی اتنا یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود میں مطلب مجھے بھی اتنا نالج نہیں تھا سوشل میڈیا کا, لیکن کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اس چیز کو تو وہ میرے لیے ذرا بہتر ثابت ہوئی جب پڑھنا تھا مجھے اس کو.
اچھا,
تو آج کل تو سوشل میڈیا کا اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا نوجوان جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ہر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی فوٹیج لے کے, کوئی کچھ ایونٹ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ نیوز کوئی نہ کوئی فراہم کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو مجھے یہ خیال اس لیے آیا کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری زیادہ یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ہیں, مطلب اولڈ ایجز جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت ٹیلی ویژن پروگرامس دیکھ رہے ہیں, بٹ ینگسٹر جتنے بھی ہیں وہ سب انوالوڈ ہیں سوشل میڈیا کی طرف. تو تب مجھے یہ خیال آیا, میں نے کہا کہ کیوں نہ کچھ اس سے کوئی بہتر چیز نکالی جائے. سوشل میڈیا کی طرف جب ہر وقت نوجوانوں کا مشغول رہتے ہیں تو کیوں نہ ان کو کسی اچھی چیز کی طرف لگایا جائے. تو تب میں نے پھر یہ سیوک پاکستان کا جو ہے انیشیٹو لیا, مطلب چینج تھرو ڈیجیٹل میڈیا, اس کو رکھا اسی لیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو آپ اپنی سوسائٹی کے جو چھوٹے موٹے روز مرہ کے معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں.
اور اس کی کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں تھی کہ آپ تو انڈر گریڈ کر رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا ہی میں اپنی بحریہ یونیورسٹی سے وہاں اسلام آباد میں؟
بالکل بالکل, اس کی سب سے مین وجہ تو یہی تھی کیونکہ میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا, تو میں نے اپنے اسی پڑھائی کو اور اسی کام کو میں نے جو ہے نا اپنا مطلب پیشن بھی بنا لیا ساتھ کا.
اچھا, تو جو کچھ پروجیکٹس آپ کو اپنے یونیورسٹی میں کرنے کو ملتے تھے آپ نے اس کو پوسٹ کرنے کا بھی ایک پلیٹ فارم بنایا ایک طرح سے؟
بالکل بالکل, مجھے جو مطلب یونیورسٹی کا جو یہ بیسیکلی سارے میرے پروجیکٹس ہوتے تھے کچھ, اور کچھ میرے مطلب کے اپنے آئیڈیاز ہوتے تھے کہ میں یہ کام کروں. کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے لیے مطلب کہ بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑی اور بہت زیادہ مطلب کہ اس میں سوشل مطلب تھریٹ بھی بہت زیادہ تھا. اب جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی ٹیررزم کے اوپر تو وہ مجھے مطلب پوسٹ کرنے سے منع کر دیا گیا, مطلب کچھ میرے ٹیچرس تھے جن کو میں نے دکھایا اس کو, تو انہوں نے کہا کہ کانٹینٹ بڑا کروشل ہے تو آپ اس کے اندر مطلب پھنس جاؤ گے, آپ کو یہ ابھی اس وقت پہ یہ پوسٹ کرنا جو ہے نا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو میں نے کام کیے یہ سارے میرے پروجیکٹس ہوتے تھے, لیکن ان کو میں کرتا اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ تھا کہ مطلب میرے ساتھ اگر کوئی کام کر رہا ہوتا تھا وہ سیکنڈ ٹائم میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا.
کیوں کیوں؟
کیونکہ بس میں اس چیز کو تھوڑا سیریس لے کے کرتا تھا, مطلب مجھے بہت زیادہ جنونی حد تک آپ کہہ لیں کہ شوق تھا کہ پروڈکشن کا کام کرنا ہے, مطلب لوگوں کو ذرا اس طرف جو ہے نا لے کے آنا ہے, مطلب ان لوگوں سے میں نے ایکٹنگ کروائی ہے جن کو ایکٹنگ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا بالکل بھی.
اچھا,
اور انہوں نے ایسی ایکٹنگ کی ہے مطلب کہ جب وہ پردے پہ آئی تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ شخص اس طرح کے ڈائلاگس بول سکتا ہے.
اچھا
بالکل.
تو یہ تو زیادہ تر آپ نے کن موضوعات پر, ایک تو آپ نے کہا دہشت گردی کے مسئلے کو بھی اجاگر کرنے کی آپ نے کوشش کی, ہم اس کی ایک جھلک بھی سنوائیں گے تھوڑی دیر کے بعد, لیکن اس کے علاوہ آپ نے دوسرے کن کن موضوعات پر ویڈیوز بنائی اور ان کو پوسٹ کیا؟
میں نے جو میرا مین کام تھا وہ بیسکلی تھا, ایک تو میں نے کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کہ ہمارے یہاں مطلب اتنے سارے ایجوکیشن کے مطلب ٹیکس بنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کے اوپر کیا افیکٹ بن رہا ہے, کیا وہ ایک چیز کو سوچ سکتے ہیں اتنی مختلف ڈائیورسٹی کے اندر پڑھنے کے بعد, وہ کیا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک میرا ٹاپک یہ تھا ایجوکیشن کے اوپر. اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جو کہ ٹیررزم کے اوپر تھی, جو کہ یہ اے پی ایس اٹیک کے سے ریلیٹڈ ٹریبیوٹ دینے کی, ان کی فیملیز کو جن لوگوں کے جو بچے گئے, جو ٹیچرز کی جن کی جو اسیسینیشن ہوا اس کے بارے میں تھی, کہ ان لوگوں کو مطلب ان کی شہادتوں کو رائیگاں نہ جانے دیا جائے, ان کو تاکہ پردہ اسکرین پہ لایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ مطلب کہ ان لوگوں نے بڑی ہمت کے ساتھ مطلب اب ایک گھر کے تین تین بچے بھی گئے ہوئے ہیں. तो एक बड़ी बात होती है कि मतलब एक साथ तीन नौजवान बच्चों का घर से चले जाना, तो उनको मतलब के ट्रिब्यूट देने के लिए एक मैंने मतलब वो लिखा भी मैंने खुद उसको प्रोड्यूस हमने मतलब के स्टूडेंट से मिलके किया, लेकिन वो जो लिखा था वो गाना मैंने खुद लिखा था, क्या पूछते हो
क्या पूछते हो। तो इस वक्त इससे पेशतर के हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, इस आपके जो जो सॉन्ग आपने लिखा था उसकी छोटी सी झलक अपने सुनने वालों तक हम पहुंचाते हैं।
बिल्कुल जरूर जरूर।
हर घर में है शोर बरबा, क्या पूछते हो, इंसान ही इंसान से है खफा, क्या पूछते हो, क्या पूछते हो, क्या पूछते हो, क्या पूछते हो।
जी ये थी झलक उस जो नज्म आपने एक तरह से लिखी, और ये उस वक्त आपने लिखी जबकि आप पढ़ रहे थे, और ये सिर्फ आपके अंदर का जज्बा था, ना आपका कोई ये शोभा था कि आप शायरी करते, लेकिन आपका जज्बा था कि आप कुछ ना कुछ इस पर लिखें और कुछ पेश करें, तो आपने खुद लिखी। और इसके लिए आपने ये कहा कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं थे कि आप उनको प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर सके या कर सकते, लेकिन इसके बाद
बिल्कुल इस तरह इसमें ये था कि हमारे पास इतनी ज्यादा सहूलियात यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थी, खासतौर पर जब मैं बैरिया में था। अब तो माशाल्लाह जब मैं निकला हूँ तो एक प्रॉपर हमारे पास एक बहुत अच्छा मीडिया लैब और काफी कुछ अब तो वेल इक्विप्ड है बैरिया यूनिवर्सिटी मीडिया स्टडीज से रिलेटेड। बट उस वक्त तो ये होता था कि हमारे पास एक ही DSLR कैमरा होता था, उसके अलावा ये जो गिटार वगैरह और ये चीजें ये सब स्टूडेंट्स की अपनी होती थी। तो एज कम्पेयर टू के मतलब मुझे अगर मैं किसी स्टूडियो से काम करवाता ऑडियो वगैरह का, तो वो मुझे अच्छा खासा उसके लिए उसकी फी थी अच्छी खासी, और मैं एज अ स्टूडेंट उस वक्त पे नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने ये आइडिया सोचा कि क्यों ना अपने जो यंग टैलेंट है उसको यूटिलाइज किया जाए। फिर एक दो दोस्त थे, एक सिंगर था और एक गिटारिस्ट था, फिर उनको मैंने पकड़ के तो उनसे मैंने जो है ना थोड़ा सा वो करके तो उन्होंने मेरी हेल्प की। हाँ। फिर उन्होंने ये गाया।
हाँ।
अलबत्ता ये उस तरीके से नहीं बन सका जिस तरीके से मतलब मैं चाह रहा था, क्योंकि ये लिखा हुआ बहुत प्यारा है लेकिन सुनने में भी उस तरह का लग नहीं रहा। इंशाल्लाह इसको मैं आने वाले वक्त में इसको मैं रिफाइन करके दोबारा से एक दफा फिर प्रोड्यूस करूंगा और सही तरीके से मतलब जिसमें प्रॉपर प्रोडक्शन होगी वीडियो।
तो हम यही बात अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं कि एक ऐसा नौजवान जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ जज्बा था और छोटी मोटी जो स्किल्स थे उन्हीं को बुरुए कार लाकर उसने एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, अकेले शुरू कर दिया और अपने एक दो दोस्तों की मदद से शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो प्लेटफॉर्म उसके लिए कितनी बड़ी कामयाबियों का जीना बनता चला गया कि उसके बाद फिर आपने ग्लोबल यूथ फोरम में भी शिरकत की, फिर यहां पर अमरीका में भी आए, और फिर आपने यहां पर आकर आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने का भी आपको मौका मिल गया, और अब आप यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आइंदा आप यहाँ पर मास्टर्स भी करेंगे इसी शोबे में जिसमें आपका पैशन है। बिल्कुल
बिल्कुल। तो, फिल्म प्रोडक्शन और मीडिया प्रोडक्शन में इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि इसमें मास्टर्स भी करूंगा। यहाँ आके मतलब के काफी चीजों को मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो हमारी जो मीडिया स्टडीज है और यहाँ में बहुत डिफरेंस है।
तो ये लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है, हमारे आम सुनने वालों को शायद ये इल्म ना हो, वो तो यही समझते हैं कि आप जब विजिट वीजे पर यहाँ पर आते हैं तो आप कॉलेज में दाखला शायद नहीं मिल सकता, तो आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप तो यहाँ अमेरिका में आए थे ग्लोबल यूथ फोरम में शिरकत के लिए, जो वर्ल्ड बैंक का एक सालाना एक फोरम था, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ वर्जीनिया के कम्युनिटी कॉलेज में दाखला ले लिया वीडियो और फोटोग्राफी के शोबे में। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई पाकिस्तानी नौजवान किसी फोरम में शिरकत के लिए आए और उसे यहाँ किसी कॉलेज में दाखला आसानी से मिल सके?
बिल्कुल, हर तरह की हर चीज पॉसिबल है। इंसानी दिमाग जब तक मौजूद है तो तब तक हर चीज पॉसिबल है। सिर्फ हमारे लोगों का सबसे बड़ा इशू यह है कि हम लोग मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तो हम लोग मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल अपने, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज की आदत नहीं है कि एक प्रॉपर तरीकेकार के साथ आप उस चीज को लेके चलें। तो हम ज्यादा शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। मतलब आदत नहीं है कि आप दरख्त से चढ़ के खुद ताजा फल तोड़ के खाएं, जो नीचे गिरा हुआ पड़ा है आप उसको खाने की आदत है हमें।
तो आपने कैसे?
यहाँ पे भी हर चीज का हल मौजूद है। मतलब अगर आप यहाँ आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना कि यूथ फोरम का हमारी जनरेशन को यंगस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पता, उनको चाहिए कि इस चीज के बारे में सर्च करें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है। दुनिया भर में यंगस्टर्स को इस वक्त प्रायोरिटी मिल रही है हर जगह पे, सिर्फ इसीलिए मिल रही है कि वो लोग चाह रहे हैं कि यंगस्टर्स को आगे लाया जाए किसी सोशल एक्टिविज्म के अंदर, सामाजिक कामों के अंदर यंगस्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे यंगस्टर्स को चाहिए कि अपना फेसबुक और इन चीजों से निकल के ज्यादातर इन चीजों को सर्च करना चाहिए कि आपके पास इंटरनेशनल बाहर निकलने की और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटीज क्या है। और दूसरा, जब यहाँ आते हैं तो आपके पास थ्रू प्रॉपर चैनल हर चीज मौजूद है। अब मैं यहाँ आया, मतलब मैंने यहाँ पर आके जब मैं डाइवर्सिटी में इतने मुख्तलिफ लोगों से मिला, देखा, और फिर मैंने यहाँ पे सर्च आउट किया कि मतलब अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो मुझे क्या बेहतर लगेगा। मैंने थोड़ा सा एक दो दिन फाइंड आउट किया तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिली। फिर मैंने इसीलिए फिर ये नोवा के अंदर फोटोग्राफी स्पेशलाइजेशन और इसमें वीडियोग्राफी भी है, इसमें मैंने फिर एडमिशन लिया। और मैंने इसको मतलब के थ्रू प्रॉपर चैनल जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन किए और सब कुछ जिस तरीके से उन्होंने मतलब के एक प्रोसीजर बताया हुआ था मैंने उसको फॉलो अप करके उसी तरीके से अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। विद इन 2 months मुझे जो है ना उनका रिजल्ट आ गया कि आप एडमिशन हो गया है, इस तरह मुझे कोई इशू नहीं हुआ।
तो इससे पहले कि आपका यूथ फोरम में शिरकत का वीजा खत्म होता, आपने अब यहाँ पर कम्युनिटी कॉलेज में नोवा कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन जाहिर है कि इसकी इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस तो बहुत होती है, तो किस तरह मैनेज किया आपने इसको?
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में कोई बाहर से आगे पढ़ेगा, और बिल्कुल उसी तरह ही है ये भी। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मेरी फैमिली पीछे बैकहैंड पे इतने थे कि मतलब मुझे वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने ही सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह आगे भी अभी कुछ टाइम के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद कहीं मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपने ओन पे हर चीज कर
सकूंगा। तो ये
कर रहे हैं।
हाँ, तो ये तय हुआ कि आपकी सिर्फ ये बचत हुई कि अगर आप पाकिस्तान से दाखला लेते यहाँ पर तो आपका वक्त ज्यादा लगता और हो सकता है आप उस तरह कंटिन्यू ना कर सकते अपनी एजुकेशन को जिस तरह कि आपने अंडर ग्रेड्स को खत्म करते यहाँ पर आए और यहाँ आते ही फिर आपको आगे दाखला मिल गया, तो ये आपको ज्यादा वक्त लग जाता।
बिल्कुल, वक्त ज्यादा लगता, मेरे एक्सपेंसिव डबल हो जाते, मतलब मुझे ज्यादा उसके लिए पे करना पड़ता दोबारा जाके फिर दोबारा आना, तो वो एक्सपेंसिव ज्यादा थे। इसके अलावा वक्त ज्यादा बन जाता। मैं एक चीज के लिए मैं लकी हूँ, मैं जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया तो मेरा 10 जुलाई को मेरा लास्ट पेपर, सॉरी 2 को मेरा लास्ट था पेपर, और मेरी फ्लाइट थी 11th की। मैं इसलिए लकी हूँ कि मतलब मैं जैसे ही पास आउट हुआ यूनिवर्सिटी से तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैंने अप्लाई किया इसको सर्च करने के बाद, मैं इसके ऊपर लगा हुआ था लास्ट 3-4 months से अपने एग्जाम से पहले से, तो मैं साथ साथ ये भी देख रहा था, तो वो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मतलब जैसे ही पास आउट हुआ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी और मैं यहाँ पे आ गया।
तो इस ग्लोबल यूथ फोरम की तो हम बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि उसकी बेस क्या बना आपका, ये जो स्विक पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म था उसकी बेस पर आप यहाँ पर आए?
उसी की बेस के ऊपर मेरे मतलब जो वो वीडियो वर्क था मेरा सारा, और जो मतलब जिस तरह मैं सामाजिक कामों के अंदर एक्टिविज्म था, उसी बेस के ऊपर मुझे यहाँ पे मतलब के इस यूथ फोरम के ऊपर बुलाया गया।
तो और भी थे कुछ पाकिस्तान के नौजवान यहाँ पर फोरम में?
मुझे सबसे ज्यादा अफसोस यही हुआ है कि मतलब जितनी क्वांटिटी में मैं दूसरी मुल्कों से आए हुए तालिब इलम देखता रहा हूँ, तादाद में मुझे पाकिस्तानी नजर नहीं आए। मेरे साथ एक मैं था और 2 और लोग थे।
अच्छा।
मैं मतलब के बड़ा हैरान हुआ था, मतलब जिस कंट्री से भी देखें 8-10-15 लोग, कम से कम 10-15 लोग जो है ना आए हुए थे, कीनिया से, सूडान से, हर जगह थे।
अच्छा।
तो मुझे पाकिस्तान में ये था कि क्योंकि पाकिस्तान में शायद इतने लोगों तक रसाई नहीं है इस चीज की कि उन लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा कुछ चल रहा है दुनिया में।
तो हम तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के बाद ये जो फोरम है इसकी जो वेबसाइट है वो हम अपने फेसबुक पेजेस पर उसके लिंक्स पोस्ट कर देंगे, ताकि वो नौजवान जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अगले साल के जो इस फोरम में शिरकत के लिए अप्लाई करें और उनको उनको भी मौका मिल सके कि वो यहाँ आकर इस फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और एक एक्सपोजर हासिल करें, और फिर मुबीन की तरह यहाँ पर उनको भी मौका मिल सके किसी कॉलेज में दाखिला लेने का,
कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है पाकिस्तान में अब इस वक्त में मतलब 2016 के अंदर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होने वाले हैं, जो उसके अलावा मुझे मैं जिन लोगों को जानता था, मैंने काफी लोगों को देखा है सोशल एक्टिविज्म के अंदर इन्वॉल्व है बहुत सारे, और वो कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। एक तो मतलब हमारी जो आला सतह के जो लोग हैं जैसे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, इनकी अपनी जो तकद हो इन तक है, लेकिन हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये जो है ना रुझान पैदा होता जा रहा है दिन ब दिन, कि वो अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं।
और ये बड़ा पॉजिटिव चीज है और ये आप बिल्कुल पॉजिटिव है और ये इसमें यकीनन डिजिटल मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा रोल है जिसने ये शऊर और आगही बेदार की है और उनको नॉलेज फराहम किया है कि दुनिया में ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है कि आप सामाजिक काम करें क्योंकि सामाजिक ये आपको दुनिया में आगे जाने के मौके फराहम करते हैं। अच्छा लेकिन इससे पेशतर कि हम ब्रेक की तरफ जाएं आपसे ये सवाल जरूर करूंगी कि अब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बन गए हैं और इसका सबसे बड़ा मसला तो ज़ाहिर है कि फाइनेंस होता है जो लकीली आपको नहीं हुआ दरपेश, लेकिन इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट खासतौर पर एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ अमरीका में आता है तो उसको जनरली किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है?
मसाइल तो सबसे पहले तो आपको जो एक जो कल्चरल शॉक लगता है आते साथ ही कि आपको आप इतने ज्यादा डाइवर्स लोगों के अंदर कभी रहे नहीं होते, वो बिल्कुल मेरे साथ भी था। जो फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ फेस की सबसे पहले तो मैं मतलब कि मेरी नींद का जो एक ट्रांजैक्शन थी वो बड़ी अजीब सी थी,
वो तो जेट लैग हो गया ना,
दिन और रात का जो डिफरेंस था वो बड़ा मुश्किल से कवर हुआ था।
चलिए नहीं
के बाद बिल्कुल लोगों का जो लोग आपके पास आप जिन लोगों से मिलते हैं इंटरनेशनल लोग और आप पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को वो आपको बड़ा मतलब चेंज एक लग फील होता है। फिर जब आपने अगर एडमिशन लेना है तो उस जगह पे अगर आपको कोई कम्युनिकेशन का एक इशू सबसे ज्यादा हमारे लोगों में पाया जाता है कि हम कम्युनिकेशन का या आप अगर ठीक कम्युनिकेट कर रहे होंगे हो सकता है कि आपका ओपोनेंट जिससे आप बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन में कहीं लैग कर रहा हो, वो भी किसी और कंट्री का आया हुआ है। तो ये एक छोटा सा गैप होता है लेकिन मैं इसलिए लकी रहा हूँ कि मुझे मैं जहाँ गया हूँ तो मुझे मतलब के अच्छे लोग मिले। एक तो ये एक्सेप्टेंस है बड़े मतलब के आपको जो है ना पोलाइटली आपको लेते हैं लोग, इन लोगों में एंगर नहीं है जिस तरह हम पाकिस्तानियों में है। तो अगर आपने कोई चीज रिपीट की है तो पाकिस्तान में तो वो एकदम गुस्सा आ जाता है ना लोगों में, इन लोगों में वो चीज नहीं है, बड़े पोलाइटली आपको दोबारा से रिपीट करके वही चीज बताएंगे कि अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
पाकिस्तान में तो आमतौर पर कभी कभी ये भी देखने में आता है कि मजाक उड़ाने शुरू हो जाते हैं ना एक दूसरे का,
बिल्कुल बहुत ज्यादा
कि किसी ने अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है कोई वीक है किसी चीज में तो बजाय इसके कि उसको एनकरेज करें कोशिश ये होती है कि उसका मजाक उड़ा के एंजॉय किया जाए।
बहुत ज्यादा जो एक इसका तो मैं बिल्कुल गवाह हूँ, मतलब मैं जब पोडियम पे मौजूद था ग्लोबल यूथ फोरम के तो उस वक्त में मतलब कि मैं काफी देर कॉन्वर्सेशन के बाद मैं एक जगह पे थोड़ा सा स्टक हो गया, तो मैं अलबत्ता जब स्टक हुआ उसके बाद मैंने उसको ओवरकम कर लिया अपने उस डर को, और वो क्योंकि एकदम से आप अभी इतने ज्यादा 500-600 लोगों के सामने और वो भी पॉलिसी मेकर दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके सामने बोलना एक छोटी बात नहीं होती, तो उस चीज का एक फियर था मेरे अंदर, वो मैंने ओवरकम किया उस जगह पे। लेकिन जब मैं अपने पोडियम से नीचे आया हूँ तो वो उन्हीं ऑडियंस में से मेरे पास लोग उठ के आए हैं और आके उन्होंने मतलब के मुझे अप्रिशिएट किया है।
तो वो एनकरेज करते हैं और
हौसला अफजाई करते हैं
और हर आदमी हर शख्स दूसरे को आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है और कोशिश करता है कि उसकी राह में रुकावट ना डाली जाए, और यही वजह है कि हर आदमी जब आगे बढ़ता है तो ओवरऑल पूरी कौम आगे बढ़ती है ना। अच्छा
बिल्कुल,
तो मुबीन उल इस्लाम हमारी गुफ्तगू अभी जारी है और हमने कुछ बात तो कर ली इंटरनेशनल यूथ फोरम की जो वर्ल्ड बैंक है जिसके तहत आप यहाँ पर आए थे और आगे आपको मौके मिलते चले गए, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम इस फोरम के बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे।
Incredibly excited to welcome you to the 2016 Global Youth Forum. My name is Hirut McLeod. I'm here with
Jamie Leclay.
And we're excited to be here with you.
And this is not to say that those lives mattered more than anyone else.
The responsibility to pass that on to the next generation.
ग्लोबल यूथ फोरम वर्ल्ड बैंक का एक सालाना इवेंट है जिसका मकसद दुनिया का मुस्तकबिल बेहतर और महफूज बनाने के लिए दुनिया भर के बासलाहियत नौजवानों को मुतहर्रिक करना है।
ग्लोबल यूथ फोरम मुझे इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, अब डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लोग हैं, इन लोगों से मिलकर इन लोगों से बातचीत कर कर पता लगता है कि आप दूसरी सोसाइटीज़ को जैसा सोचते हैं वो वैसी नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नौजवान पाकिस्तानी वीडियो और फोटोग्राफर और सिविक पाकिस्तान मूवमेंट चेंज थ्रू डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव के फाउंडर मुबीनुल इस्लाम से। हमारे मेहमान मुबीनुल इस्लाम को हाल ही में ग्लोबल यूथ फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल हुआ है और वो हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाले इंटरनेशनल यंग लीडर्स असेंबली के सालाना प्रोग्राम में भी एक पाकिस्तानी यूथ फेलो के तौर पर शिरकत कर चुके हैं। हमारे मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। हमारे मेहमान मुबीनुल इस्लाम इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ। जी मुबीनुल इस्लाम, बात करेंगे आपकी यूथ फोरम की, ग्लोबल यूथ फोरम की। कुछ बताइए कि आलमी बैंक के जेर एहतमाम जो ये सालाना इंटरनेशनल यूथ फोरम होता है और इस साल 2016 में जिसमें आपने शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की पाकिस्तान नौजवानों की, उसमें आपने ये तो बता दिया कि शिरकत कैसे हुई, लेकिन इसमें ऐसा क्या क्या हुआ जो किसी भी एतबार से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अहमियत रखता है?
बिल्कुल, ये 3 रोजा यूथ फोरम है जो कि बिल्कुल तरक्की में नौजवानों के सामाजिक किरदार पर फोकस है। पाकिस्तानी अवाम के लिए और मतलब नौजवानों के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि अभी हम लोगों में टॉलरेंस की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आके आपको जो है ना बहुत सी चीजें आपके सामने एक्सप्लोर होती हैं। मतलब अब हमारा, अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करूँ, मैं यहाँ आया तो मेरे बिल्कुल यंग सी छोटी सी 17 ईयर्स की यूथ फेलो थी इंडिया से, रिया नाम था उनका। तो उन्होंने मतलब कि जब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन के बाद, तो जाहिर बात है हिंदी और उर्दू का जो एक जो डिस्कशन होती है तो उस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की कि हमारी बुक्स के अंदर आपके बारे में तो बड़ा कुछ होता है कि मतलब आप लोग टेररिस्ट हो, ये हो, वो इंडिया की थी। तो जब मैंने उसको मतलब के चीजों का थोड़ा एक्सप्लेन किया और उसको बताया, और जब उसने मतलब की मुझसे मिला और मतलब मेरे साथ अगर एक दो और पाकिस्तानियों से वो मिली और उसको मतलब बहुत अच्छा लगा, उसने मतलब कि ये कहा कि आप लोग तो मतलब जैसा हमें किताबों में बताया जाता है आप तो उससे बिल्कुल ही अपोजिट हो। मतलब आप लोग इतने लविंग हो और इतने मतलब प्यार से आप लोग मिलने वाले हो, मतलब आप एक्सेप्ट करते हो चीजों को, लेकिन आप लोगों को क्यों इतना पड़ रहे थे? उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये सारा एक ये इंटरनेशनल सिलसिले अलग है लेकिन अवाम और लोगों के अंदर रुझान एक अलग है। तो इसलिए हम लोगों को मतलब जैसे कि इंडिया और अगर पाकिस्तान की खास तौर पे बात की जाए तो इन लोगों को ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आने की बहुत जरूरत है ताकि इन लोगों के अंदर जो जहन के अंदर जो इंतशार और जो चीजें फैली हुई हैं, जो बुक्स और दूसरे जराये से हमें मिलती हैं मीडिया से, वो खत्म हो।
तो ये एक तरह से आप समझते हैं कि एक जरिया बना उन स्टीरियोटाइप्स को, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का जो कि यहाँ के नौजवानों में, वहाँ के अवाम के लिए और वहाँ के अवाम में, यहाँ के अवाम के लिए यानी पाकिस्तान के लिए होती है। अच्छा, लेकिन इसमें आपने कहा कि 3 रोजा था और इसमें कितने सेशंस हुए और उनमें किन किन मौजूदात पर गुफ्तगू हुई?
बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ये सामाजिक किरदार के ऊपर फोकस है, जैसे कि आज के नौजवान माशरे में तब्दीली को देख रहे हैं, इस चीज को ये ज्यादा फोकस करते हैं कि कैसे अपनी मस्बत सोच से तब्दीली लानी चाहिए। इस फॉर्म पर आने वाले तकरीबन पूरी दुनिया से वो नौजवान थे जो कि अपनी सोसाइटीज में कुछ ना कुछ मतलब के इंसानियत के लिए कुछ बेहतरी का काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर सोच रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर मतलब ज्यादा फोकस था, जो लोग थे ज्यादा, अब जैसा मैं भी सोशल एक्टिविज्म में था, इसी तरह बहुत से थे जो चैरिटी के ऊपर काम कर रहे थे, बहुत से थे जो कि फंड रेजिंग कर रहे थे लोगों के लिए, सोमालिया सीरिया इस साइड के ऊपर जो लोग हैं उन लोगों की मतलब के कफालत के लिए लोग काम कर रहे थे। तो इस चीजों के अंदर नौजवानों को खास तौर पे इन्वॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं और इनके अंदर डिस्कशंस के डिफरेंट वो होते हैं, आप डेवलपमेंट से रिलेटेड डिस्कशन होती है, एजुकेशन से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, फिर जो डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इसके वर्ल्ड बैंक के, जो के 7 गोल्स हैं जिसमें के गुर्बत आती है, फिर आपकी डेवलपमेंट आती है, फिर आपका वॉर एंड टेरर आता है, वुमेन एम्पावरमेंट आती है, इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होती हैं। अच्छा। इनके ऊपर डिस्कशन के बाद फिर उन यंगस्टर्स की राय ली जाती है कि आप लोग इन सोशल इश्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, कोई नई चीज है बताने के लिए या कुछ करने के लिए को आपकी चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो वो चीज आप सामने लेके आए।
तो आपने फिर शेयर किया दूसरे मुल्कों के नौजवानों के साथ कि पाकिस्तानी नौजवानों के क्या मसाइल हैं और उनके क्या मसाइल हैं, तो क्या चीजें आपको दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के मसाइल से कॉमन मिली और क्या चीजें थी जो बहुत ही आपको डिफरेंट लगी और आपको नई नई लगी?
बिल्कुल, सबसे जो मेन चीज थी जो हमारे नौजवानों को जिस चीज का इशू है, वो तो सबसे पहले जो है जो आपके पास मयसर नहीं है, आपके पास हालात नहीं है इस तरह के पाकिस्तान में। बाकी दुनिया में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत अच्छे वो हैं, उन लोगों को रसाई है हर चीज की, जो कि पाकिस्तानी नौजवान को नहीं है।
नहीं मतलब किस चीज तक रसाई?
जैसे कि अब मैं जैसे काम कर रहा था, मुझे इक्विपमेंट का मसला था।
अच्छा।
इसी तरह की जो मतलब कि आपको प्लेटफॉर्म्स की रसाई नहीं है, जैसे यूथ फोरम है, इस चीज का बहुत कम लोगों को पता होगा पाकिस्तान में, क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान के जो तालिबे इल्म थे इनकी तादाद बहुत कम।
ठीक है, एक तो ये हुआ कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि दुनिया में उनके लिए क्या क्या मवाक़े मौजूद हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के लोगों को आप समझते हैं कि बहुत कम ये मालूम था। इसके अलावा और कौन से मसाइल थे जो कॉमन थे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के नौजवानों के मसाइल से, पाकिस्तानी नौजवानों के मसाइल से?
सबसे ज्यादा जो कॉमन थी वो अनएम्प्लॉयमेंट थी।
अच्छा।
जिसके ऊपर मतलब के हर जगह के नौजवान जिसके ऊपर बात कर रहे थे, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा एजुकेशन, ये दो चीजें जो है फिर इनके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। और तीसरे नंबर पे फिर आई थी फिर पॉवर्टी के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा किया था, लेकिन जो मेन चीज थी वो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो के लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से, जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर ली हैं, उन लोगों के पास जॉब के मौके नहीं है उन कंट्रीज के अंदर।
तो उन्होंने क्या जो उनकी सजेशंस क्या सामने आई कि अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को हल करने के लिए क्या होना चाहिए इन मुल्कों में?
उन मुल्कों के अंदर अब जैसे कीनिया और उसकी बात की जाए, कीनिया के अंदर भी इन मुल्कों में डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ जो है ना और इस सोशल एक्टिविज्म की तरफ इसीलिए नौजवानों को लेके आया जा रहा है। जिन लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट का तरह इशू है, उन लोगों को इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ रागब किया जा रहा है, ताकि वो एज कम्पेयर टू सोशल एक्टिविज्म भी करें और साथ साथ उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बन सके।
और ये वही कॉन्सेप्ट है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का है?
बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह ही। जो यंगस्टर्स को ज्यादा बहुत से थे ऐसे थे जिन्होंने, ऐसे नौजवान मौजूद थे जिन्होंने के एक बिजनेस अपना कहीं से स्टार्ट किया था और वो पूरी दुनिया में है, और वो उनकी उम्र बहुत होगी तो 28-29 साल के थे, 30 साल के थे।
तो यानी समाजी या फलाही कामों को शुरू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जो इतना बड़ा बन जाता है कि वो आपके लिए रोजगार का जरिया भी बन जाता है, वो अपनी आमदनी खुद ही उसमें हासिल होती है और खुद ही समाजी काम भी फिर होते रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक ये चीज भी है, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो था उसकी तरफ बहुत ज्यादा इन्होंने वो किया नौजवानों को कि आपके पास अगर कम वसाइल भी हैं तो आप अपना काम खुद से करें। कुछ किसी भी चीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे या किसी उसके तौर पे जॉब अगर आपको नहीं मिल रही, मार्केट में जॉब्स का इशू है, तो आपके पास अगर थोड़ी सी भी रकम है या नौजवानों को थोड़ी सी भी रकम प्रोवाइड की जाए तो वो उससे कुछ ना कुछ काम कर सकें।
और जो स्किल्स उनके पास हैं, जो स्किल्स मसलन अगर कोई पढ़ा लिखा है तो मतलब वो पढ़ा सकता है, इसी तरह अगर किसी को कुछ हुनर आता है तो वो उसे काम में ले आए, बजाय इसके कि वो घर में बेकार बैठे। और छोटी मोटी जॉब करने से भी, जैसे कि यहाँ पर नहीं शर्माया जाता, उसको दूर किया, वो बड़ा एक फिनोमेना है हमारे खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में कि शर्म आती है छोटा काम करते हुए कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो इसकी तरफ भी तवज्जो देने की आप समझते हैं कि जरूरत है?
बहुत ज्यादा, और खास तौर पे मतलब कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी को देखूं, पाकिस्तान को देखूं, तो इस पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही हमारा तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसकी सोच यही होती है कि मतलब कि मैंने इतनी ज्यादा मनी स्पेंड की है, या उसको पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर होता है कि तुम पे इतना खर्चा हमने कर दिया है, अब आपको जो है ना कोई अच्छी सूटेबल जॉब, वो उस सूटेबल जॉब के चक्कर में जो है छोटी मोटी जो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो उनको जो है ना इग्नोर करता रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक आपने देखा कि यहाँ पर आपने लोगों को देखा कि जो ही यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, चाहे वो किसी स्टोर पर खड़े हो जाएं, लेकिन वो अपने अपने पांव पर खुद खड़े होते हैं, बल्कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही वो अपना काम शुरू करते हैं और अपने जो किसी पर बोझ नहीं बनते.
बोझ नहीं बनते, बिल्कुल. इसमें ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है और ये यहाँ पे सिखाया भी यही जाता है. मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी, इन लोगों की तरफ से भी, ये जो है ना एक होता है कि आप अपना काम जो है ना अपने पांव पे बच्चे खुद खड़े हो. जैसे कि यहाँ पे तो स्कूल्स के बाद ही कम्युनिटी कॉलेजेस में आते हैं, तो तब से बच्चे काम कर रहे होते हैं.
तो शर्म की बात ये नहीं कि छोटी जॉब की जाए, शर्म की बात ये है कि अपने किसी के आगे हाथ फैलाया जाए, चाहे वो अपने वालदैन ही क्यों ना हो. एक
बिल्कुल,
एक यूथ को यहाँ पर ये उसकी सोच डेवलप की जाती है. अच्छा, तो आपकी फिर नेटवर्किंग हुई दूसरे मुल्कों के लोगों से जब आप मिले, तो किन किन मुल्कों के नौजवानों को आपने अपने जैसा पाया और आपने चाहा कि उनसे आपका रابطہ मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए?
बिल्कुल बिल्कुल. इसमें सबसे पहले तो मैं सबसे पहली मिसाल तो दूंगा कि इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि ये हमारा हिस्सा था पहले भी. तो मेरी सारी स्टार्टिंग जो थी वो ज्यादा इसी तरफ थी कि किसी तरीके से, मतलब जो इंडियंस और बांग्लादेशी जो लोग हैं, वो मैंने कुछ देखा है कि मुझे कुछ तो बहुत अच्छे लोग मिले. मतलब जिस तरीके से मैं उन्हें मिला हूँ, उस तरीके से उन्होंने मुझे आगे से रिस्पॉन्स दिया है. लेकिन कुछ उनमें ऐसे भी मुझे मिले हैं कि जिन्होंने मतलब कि मुझसे बात करना भी पसंद नहीं की, बीइंग अ पाकिस्तानी. तो बस ये एक मैं जो कह रहा था कि मेरी जो कोशिश थी वो ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान पे थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे जो अच्छे लोग मिले, कीनिया से मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले. फिर उसके अलावा मुझे अब ग्वाटेमाला का मुझे कोई इल्म नहीं था कि ये कंट्री कहाँ पे बिलोंग करती है. उसका मुझे पता लगा कि ब्राजील के साइड पे कहीं जाके एक ग्वाटेमाला है और वहां के और बड़े अच्छे मतलब इंटरप्रेन्योर्स थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई. मतलब हर हिस्से से ही तकरीबन दुनिया के किसी ना किसी हिस्से से मैं लोगों को अब मतलब जानता हूँ. मतलब इतनी सोशल नेटवर्किंग हमारी हुई है अब.
तो ये एक मजबूत जरिया बना, एक ग्लोबल यूथ फोरम, जिससे आप पूरी दुनिया के नौजवानों से कनेक्ट हो गए. हाँ
बिल्कुल, बहुत. और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और क्योंकि मेरा काम देखने के बाद, जैसे कि इटली के कुछ लोग थे और उन्होंने जब मेरा मतलब के मेरे पेज के ऊपर गए, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, तो उनके मुझे मैसेजेस आए कि आपने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया हुआ है अपने सोशल एक्टिविज्म के ऊपर, तो क्यों ना हम मिलके कोई काम करें.
अच्छा अच्छा, तो अब आपका प्रोग्राम
के साथ चल रही है डिस्कशन.
अच्छा, तो प्रोग्राम है कि आप पूरी दुनिया के नौजवानों से, जिन जिन से आपका रابطہ हुआ है, जिनसे आपकी दोस्तियां हो गई हैं, उनको अपने साथ मिलाकर इस जो डिजिटल मीडिया को है इस्तेमाल करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी खवातीन के लिए भी. खवातीन के लिए भी आपने उनके मसाइल को उजागर करने के लिए वीडियोज वगैरह बनाई या उस पर काम कर रहे हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल. मेरा अभी क्योंकि मैं यहाँ पे भी बहुत देखा है, इतनी एम्पावरमेंट के बावजूद भी ये लोग, मतलब जहाँ पे वुमेन के पास बहुत एम्पावरमेंट है, उसके बावजूद भी ये लोग उस चीज के ऊपर फोकस है जो कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है. हमारी सोसाइटी में तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही कुछ किसी और तरीके से लिया जाता है. जो मैंने आजकल देखा है कि यंगस्टर्स के अंदर, जो नौजवानों के अंदर मैंने जो बात देखी है आजकल, वो वुमेन एम्पावरमेंट को किसी और तरीके से कंसिडर कर रहे हैं. तो वो उस चीज को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है. इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो भी इसी चीज के ऊपर ही होगी कि वुमेन एम्पावरमेंट असल में है क्या.
तो ये इश्यूज जो हैं, इसको जब भी आप, जाहिर है कि अभी तो आप एजुकेशन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे, अभी तो आपने अभी सिर्फ अपने मास्टर्स अभी शुरू नहीं किया, लेकिन एक दाखला ले लिया है नोवा कॉलेज में, ताकि आप अपने इस इल्म को पहले बढ़ा लें और फिर किसी यूनिवर्सिटी में दाखला लें मजीद. तो लेकिन इसके बाद आपका ये प्रोग्राम है कि इन इश्यूज को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने सिविक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे.
जी, बिल्कुल बिल्कुल. मेरा मतलब कि कुछ टॉपिक्स हैं अब जो मेरे माइंड में है, जिनके ऊपर मैंने काम करना है, जो जहाँ पे आगे मुझे मतलब काफी सारे टॉपिक्स मिले, बहुत सारे. वैसे भी हमारे यहाँ मतलब सोशल इश्यूज की अगर बात की जाए तो बहुत सारे हैं. वो आप दिखाते रहे दुनिया को तो वो दुनिया देखती रहेगी, और इतने सारे हैं कि खत्म होने वाले नहीं है,
खत्म होने वाले नहीं है. हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा?
नहीं है जो उनको कुछ कर सकते हैं, अगर ये जिस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं. अब मैं अगर बताऊं आपको, तो मेरे साथ के जो लोग थे, अब ये ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान जो लड़का काम कर रहा है जिसके लिए, अब ये लड़का भी बड़ा मेहनती था, और इसने मतलब ये मेरा सीनियर था, अली हैदर नाम है उसका. तो वो उस वक्त में मैं इसको देखता था कि एक कैमरे के साथ लोगों की सिंगल पिक्चर लेना और काफी दूर दूर जाके इनके इंटरव्यूज करना, मतलब इसने अपनी मेहनत के ऊपर अपने आप को वो किया है. इसी तरह मतलब अगर जो नौजवान अपनी इन एक साइड किसी के ऊपर लग जाएंगे और अपने काम की तरफ मुतवज्जो होंगे, तब जाके ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी भी इस काबिल हो जाएगी कि उसके अंदर से ये स्टीरियो टाइपिंग खत्म हो और इस तरह की जो है ना तंग नजरी खास तौर पर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए.
तो बेहद शुक्रिया मुबीन उल इस्लाम. हमारी गुफ्तगु अभी जारी है, एक ब्रेक का वक्त फिर हो गया है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम गुफ्तगु को आगे बढ़ाएंगे. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नौजवान पाकिस्तानी वीडियो और फोटोग्राफर और सिविक पाकिस्तान मूवमेंट चेंज थ्रू डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव के फाउंडर मुबीनुल इस्लाम से. हमारे मेहमान मुबीनुल इस्लाम को हाल ही में ग्लोबल यूथ फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल हुआ है और वो हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाले इंटरनेशनल यंग लीडर्स असेंबली के सालाना प्रोग्राम में भी एक पाकिस्तानी यूथ फेलो के तौर पर शिरकत कर चुके हैं. मुबीनुल इस्लाम सिविक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों को उनके अहम मसाइल और उनके हल के बारे में शऊर व आगाही पैदा करते हैं और इस सिलसिले में डिजिटल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीके भी सिखाते हैं. बहरिया नेवल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन के बाद यहाँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया के नोवा कॉलेज में फोटोग्राफी के शोबे के एक इंटरनेशनल तालिब इल्म मुबीनुल इस्लाम सिविक पाकिस्तान की अपनी टीम के साथ मिलकर म्यूजिक वीडियोस के साथ साथ तालीम, खवातीन के हुकूक, घरेलू तशद्दुद और दहशतगर्दी के मसाइल पर मुतअद्दिद मुख्तसर दस्तावेजी फिल्में तैयार और पोस्ट कर चुके हैं. हमारे मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu. जी मुबीनुल इस्लाम, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. हमने अभी जिक्र किया इंटरनेशनल यंग लीडर्स असेंबली के प्रोग्राम का जिसमें आपको शिरकत का मौका मिला. कुछ बताइए हमारे पाकिस्तानी सुनने वालों को, पाकिस्तानी नौजवानों को, कि ये कौन सा प्रोग्राम है और इसके लिए अगर वो शरीक होना चाहें इस प्रोग्राम में तो कैसे शरीक हों.
जी बिल्कुल, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आती रहती हैं. सबसे पहले जो चीज है वो हमारे यंगस्टर्स को जो जिस चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत है वो इन चीजों को सर्च करने की. हर वक्त फेसबुकिंग और सोशल नेटवर्क से अटैच हैं आप, इसका मतलब है तो ठीक है लेकिन इन चीजों की तरफ भी फोकस करना चाहिए. तो ये जो अभी इंटरनेशनल ये दोनों फोरम्स थे, ये यंगस्टर्स की दोनों का मकसद एक ही था कि यंगस्टर्स को किसी तरीके से सोशल एक्टिविज्म के अंदर जो है ना इन्वॉल्व किया जाए और वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके आइडियाज के ऊपर काम किया जाए और उनके साथ मिलके उनकी सोसाइटीज में कुछ बेहतर लाया जाए. तो ये इन दोनों फॉर्म्स का मतलब यही था. लेकिन जो इंटरनेशनल यंग लीडर्स असेंबली है ये थोड़ा जरा लेंथी है, मतलब ये 9 दिन का एक फॉरम है जिसके ऊपर के तकरीबन 800 जो है ना आते हैं पूरी दुनिया से तालिब इल्म यंगस्टर जो के सोशल एक्टिविज्म में. इसका यह है कि इसमें आपको थोड़ा जो है ना पे करके आना पड़ता है लेकिन इसमें जो कुछ ऐसे फॉरम भी है जिस तरह ये वर्ल्ड बैंक वाला फॉरम है इस पे आपको टोटली मतलब कि आपको वो आप हर चीज के लिए जो है ना प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको फैसिलिटेट करते हैं हर चीज से. इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता कुछ भी.
अच्छा, लेकिन तो यंग इसमें इंटरनेशनल यंग लीडर असेंबली जो थी ये किसका प्रोग्राम है?
यूनाइटेड नेशंस का.
अच्छा, ये यूनाइटेड नेशंस का है लेकिन इसमें अगर आप शरीक होना चाहें किसी दुनिया के किसी भी हिस्से से तो आपको पे करना पड़ता है.
बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, आपको मेंबर बनना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको आके यहाँ पे जो है 9 दिन इन लोगों के साथ रहना पड़ता है और 9 दिन के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें होती हैं करने के लिए. जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने यूथ डे सेलिब्रेट किया था तो उसके अलावा आपको डेलीगेट्स आते हैं डिफरेंट जो यूनाइटेड नेशन के जो है बान की मून साहब, इस तरह के लोगों का जो है ना खिताब होता है जो आपको दुनिया के अंदर वसाइल से जो है ना आगाही करते हैं और फिर उनके ऊपर آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے.
اچھا,
بینگ اے ینگ سٹیزن آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, جیسے پاورٹی کا ایک ایشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کو اگر ہم کوئی اپرچونٹی دیں تو آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے اپنی سوسائٹی کے اندر.
تو اس طرح ان کو مواقع مل سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ان پروجیکٹس میں اپنی شرکت کا موقع حاصل کر سکتے ہیں.
بالکل,
تو
یہ بالکل کر سکتے ہیں.
یہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ اگر آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں تو بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی اس کے بدلے میں مل سکتا
ہے, فائدہ ہو رہا ہے آپ کو. بالکل, ایسے سے چیزوں کا مطلب اس چیز کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے کا. اگر آپ اسپینڈ بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی مطلب کہ آپ کو فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے لنکس بنتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں اس وقت چل کے رہا ہے. اپارٹ فرام نیوز, نیوز سے ہٹ کے جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ چیزوں کو آپ کو پتہ لگتا ہے, اور اوریجنل فگرز کا پتہ لگتا ہے جو کہ دنیا میں اگر پاورٹی کس خطے میں کتنی ہے اس کی پرسنٹیج کیا چل رہی ہے, جو کہ آپ کو میرے خیال سے نیوز میں بہت کم ہی بتایا جاتا ہے, یا کہ اس جگہ پہ اتنی غربت ہے, اس جگہ پہ تعلیم اتنی کمی ہے,
پوری پوری
چیزوں کا.
اچھا, تو کیوں آپ سیوک پاکستان کے پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں ان ایسے فورمز کے لنکس پرووائڈ کر کے؟
بالکل, میں بالکل یہ میں کرتا ہوں, اور جیسے جب میں آیا ہوں تو اس کے بعد مطلب میں اس چیز سے ریلیٹڈ میں انفارمیشن اپنے پیج کے اوپر ڈالتا رہا ہوں, اور خاص طور پہ مطلب کہ جب میں نے اپنے پیج کے اوپر اپنے مطلب دوستوں کے اندر تو کافی رجحان پیدا ہوا ہے, اور میرے کافی سارے دوستوں نے اس کے بعد جو کہ سوشل ایکٹیویزم میں انوالو تھے ان لوگوں نے اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیا. بالکل, میرے مطلب مجھ سے وہ گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے, تو پھر میں نے ان کو بتایا, کچھ لوگ ہیں جو جن کو میں نے انفارم کیا ہے کہ آپ لوگ کیسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو بس وہی چیز ایک یہ ہے کہ کبھی بھی شارٹ کٹ کی طرف فوکس نہ کریں, آپ کو ایک لمبے راستے سے چل کے جانا پڑے گا, لیکن وہ راستہ آپ کو اچھا لگے گا جب آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے.
بالکل, تو ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے نوجوانوں کو رہنمائی کرتے ہیں ان لنکس کو پرووائڈ کر کے جو ان کے لیے کسی بھی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. پھر ہم آپ جیسے نوجوانوں کو مدعو کرتے ہیں کہ ان کی نالج سے, ان کے تجربات سے ان کو کچھ فائدہ ہو سکے, اور وہ بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح کامیابی کے راستے پہ چل سکیں جیسے کہ وہ یوتھ یا وہ مہمان جو ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی میں شرکت کرتے ہیں. لیکن ایک سوال بڑا اہم آ گیا کہ ٹھیک ہے ہمارے فیس بک پر لوگ آتے ہیں اور بہت سارے پروگرام اچھے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن ڈیجیٹل جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال آپ کیا کہیں گے, ایک نازک کام نہیں بنتا چلا جا رہا ہے کہ کیا کہیں گے کہ جو نوجوان جب سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور جب ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کریں تو کن کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ اس کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو اس فورم کی, جو کہ ایک بڑا خوبصورت فورم ہو سکتا ہے.
بالکل, یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ہمارے جو خاص طور پہ اگر ہماری اگر اپنی سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں پاکستان کی, تو ہمارے ہاں اس چیز کو صرف فن کے طور پہ یا اس چیز کو نیگیٹیوٹی کی طرف جا کے ہم جو ہے نا اس چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جا کے دیکھتے کہ ہم اس سے کیا اچھا حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسی چیزوں کے بارے میں جو مین چیزیں ہیں, اب ان چیزوں کے بارے میں کاؤنسلنگ کرنا جو ہے نا, ایک تو وہ فرض بنتا ہے آپ کے پیرنٹس کا, سیکنڈ جو چیز آتی ہے وہ یونیورسٹی آپ کو ایسی ایسی چیزوں کے اندر انوالو رکھے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں, ایسے پلیٹ فارمز کا کرنا کہ کیسے ینگسٹر کو انوالو کریں گے ڈسکشنز کے اندر, ایسی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں ہیں جو کہ اب آنا شروع ہوئی ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے کہ اسی طرح کا ایک یوتھ فورم پاکستان میں بھی ابھی ریسنٹلی ایک ہوا ہے جو کہ اسلام آباد میں اور لاہور میں ہوا ہے, 3 روزہ تھا شاید, تو وہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ اب جو ہے نا ہماری سوسائٹی سائڈ پہ جانا شروع ہوئی ہے. لیکن اس چیز میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ کرنے کی جن جگہوں کو ضرورت ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. ان کو انفارم کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو آنے والی اپرچونیٹیز سے ریلیٹڈ, ان کو انوالو کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو سوشل ایکٹیویزم کی طرف, کیونکہ یہاں پہ تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے سوشل سماجی کاموں کے اندر, بہت بڑا, جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے.
تو وہ خاص طور پر جب بھی وہ کوئی چیز پوسٹ کریں یا کچھ لکھیں یا کچھ تصویریں پوسٹ کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, اس سے کسی کا نقصان نہ ہو کسی بھی اعتبار سے, اور اس سے وہ خود بھی کسی طرح ایکسپلوئٹ نہ ہو سکے.
بالکل, اس چیز کو بالکل دیکھنا پڑے گا. اس کی زندہ مثال بالکل آپ کے سامنے ہے, وہ جو ابھی ریسنٹلی وہ جو ڈیتھ ہوئی ہے قندیل بلوچ کی, تو اس کی بھی مین ریزن یہی بنی کہ سوشل میڈیا پہ کیسے اس کے بھائی نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ تھا. تو اس چیز کو جب بھی استعمال کریں تو سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک الفاظ لفظ سے یا چند الفاظ سے اگلے کی زندگی کے اس کے اوپر جو ہے نا مسائل بن سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. اور یہاں پہ جو فوکس کیا جاتا ہے اس سوسائٹی کے اندر, ایک انسانی جان کی بہت اہمیت ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے.
اور
ہمارے لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ انسانی جان کی اہمیت کے اوپر خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے انسانی جان کی.
اور خاص طور پر وہ نوجوان جو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں دہشت گرد عناصر بھی موجود ہیں اور وہ اس پلیٹ فارم پر بھی موجود ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو وہ ان کی مجبوریوں سے یا ان کی کسی ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے دائرے میں شامل کرنے کی کوشش نہ کر سکیں اور وہ ایسے ہاتھوں میں نہ جا پائیں جو کہ غلط ہیں.
بالکل, اس پہ تو آپ کی اپنی, یہ تو ہر انسان کی اپنی مطلب چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ابھی جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب ایک ایکٹ آ چکا ہے پاکستان میں, ہے تو یہ ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے, لیکن اس کی اب وہی بات ہے کہ ہر جگہ پہ جو چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کے لیے تو وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ کے جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو لاز اب آئے ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھے. اور اچھا ایک قدم اٹھایا گیا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ایک تو ٹیررزم کا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. میں بھی جہاں پہ بھی گیا ہوں مجھے مطلب یہی سننے کو ملا ہے کہ پاکستان مطلب ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ اور اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بھی ان سوشل میڈیا کی طرف سے اور میڈیا چینلز کی طرف سے اب آگاہی آ رہی ہے لوگوں میں کہ پاکستان ایکچوئل میں ہے کیا,
کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے.
شکار ہے بالکل,
پاکستان دہشت گردی کا شکار بھی ہے. اور جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں پاکستان میں.
سوچ ہے, وہ ایک سوچ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی ٹیررزم ایک سوچ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ بس وہ پوری دنیا میں موجود ہے, وہ یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہی ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے. وہ کیسے سوچ جو ہے نا ٹیررزم میں بدلتی ہے اس چیز کے اوپر ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سوچ کو مارنا چاہیے.
اور آپ نے اسی سوچ کو اسی پوائنٹ کو آپ نے گلوبل یوتھ فورم پر پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا, پوری دنیا کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کس طرح ایک ایشو ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے آپ نے ان سے تجاویز مانگی یا ان سے راستے طلب کیے.
بالکل بالکل, میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھا اور میں نے بالکل وہاں پہ ان سب لوگوں کے سامنے یہی بات بھی اس چیز کو فوکس کیا تھا. اور میں نے اے پی ایس اٹیک پہ جب بتایا, بہت سے لوگ تھے جو لوگ اس اے پی ایس اٹیک کو جانتے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جن کو نہیں پتا تھا, لیکن میجورٹی ان میں سے جانتی تھی کہ اے پی ایس اٹیک ایکچولی ہے کیا. تو ان لوگوں کو مطلب میں نے بھی یہی اس چیز میں جب ڈسکس کیا تو میں نے یہی کہا کہ یہ ایک سوچ بن چکی ہے ٹیررزم کی جو کہ دنیا کے ہر خطے میں ہے, اور اس سوچ کو ہمیں مارنا ہے. اور وہ کیسے مارنا ہے, انسانی دماغ کس وقت مفلوج ہوتا ہے, کیسے اس کو اس کے ذہن میں یہ ایسے خرافات آتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے اس طریقے سے. اب انسانی جان کی اہمیت کے اوپر اسی لیے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ ایک جان کی کتنی اہمیت ہے, جو کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے. اب یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر اسی چیز کو, اسی ڈبیٹ کو رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا انسانیت کے اوپر فوکس کریں.
اچھا, تو اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے, تو یہ سوال آپ سے ضرور کروں گی کہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو اپنے ایک پروفیشن کے طور پر اپنانے کا سوچا ہے, تو پاکستان میں آپ نے پڑھا ڈیجیٹل میڈیا کو اور یہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کیا پیغام دے سکتے ہیں یا آپ نے یہاں سے ایسا کیا سیکھا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں اور کالجز میں ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں ہونا چاہیے جو اب نہیں ہو رہا؟
بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس طرح کے یوتھ فورمز جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہی ہوں, یہ نیشنل لیول پہ بھی ہونے چاہیے. مطلب یونیورسٹیز کے اندر, سکولز کے اندر اس طرح کے فورمز آپس میں تمام جو ہے سکولز کا اور یونیورسٹیز کا ایک کمپٹیشن رکھا جائے. اس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیسے کرنا ہے اس چیز کے اوپر بھی ان کو گائیڈنس دینی چاہیے. سماجی کاموں کے اندر اسٹوڈینٹس کو انوالو کرنا چاہیے, इन चीजों से मतलब हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो है ना कुछ एक कदरे पॉजिटिव चीज ला सकते हैं।
और वहाँ के आपने भी बात तो की कि जाब्ते होने चाहिए, डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के जाब्ते कौन बनाएगा?
ये तो मैंने आपको जैसा बताया कि एक तो हमारे पास कानून अब आ चुका है, साइबर क्राइम से रिलेटेड एक हमारे पास कानून आ चुका है। उसके अलावा जब भी मतलब कम उम्र के जो खास तौर पे तालिबे इल्म कम उम्र के हैं उनके ऊपर तो पेरेंट्स का ही वो है कि वो उनको उनके ऊपर फोकस रखेंगे, वो बच्चे कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ और कैसे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मैंने देखा कि उनका इस्तेमाल जो है वो जरा पॉजिटिव साइड पे है लेकिन हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास और यहाँ कुछ करने को सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, वो फोकस अच्छाई की तरफ नहीं कर रहे हम लोग।
और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वहाँ के असातिज़ा के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास डेढ़ मिनट है।
हाँ बिल्कुल, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ अपने मतलब के कोर्स कंटेंट को नहीं देखना चाहिए, कोर्स कंटेंट से हट के भी कुछ बातें होती हैं जो कि आपको स्टूडेंट को बतानी चाहिए और स्टूडेंट्स भी ऐसे होने चाहिए कि जिनको पता हो गया अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर और क्या क्या नई चीजें हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज के कॉन्टेंट्स बहुत पुराने हैं, उनको हमें रिन्यू करने की जरूरत है। सोशल मीडिया से रिलेटेड, खासतौर पर डिजिटल मीडिया से रिलेटेड ये कॉन्टेंट्स हमें बदलने की जरूरत है। हम जब भी हमारे यहाँ यही एक रहा है कि हम जब भी कोर्सेज शुरू होते हैं हमारे यहाँ पुरानी चीजें चलती हैं। एच एस सी को इस पर काम करने की बहुत जरूरत है कि वक्त के साथ साथ कोर्स के कॉन्टेंट्स को भी बदला जाए
और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग,
नई से नई चीज को सीखे, नई से नई चीज की तरफ फोकस करे, ना कि पुरानी चीजें देखे 1947 की 45 की चीजों को ना देखे, नई चीजों को देखे।
और काउंसलिंग की बात आप कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, उसका कुछ जिक्र कीजिए, कितनी जरूरी है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग?
स्टूडेंट की काउंसलिंग बहुत काफी मतलब कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने खुद 4 साल गुजारे हैं बैरिया यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक स्टूडेंट फेल हो रहा है तो वो फेल होता चला जाएगा, उसको नहीं पता कि उसने किस तरह जाना है, उसने क्या करना है, जब तक उसको गाइडेंस नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट होना चाहिए स्टूडेंट काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें तालिबे इल्म को हर तरीके से बताया जाए कि आपके किस वजह से आप इस कोर्स के अंदर आपकी वीकनेसेस हैं, आपको कैसे इसको ओवरकम करना है। अगर आप ये कोर्स नहीं कर सकते तो आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपने इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जाना है उसके लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक इंटरनेशनल अफेयर का ऑफिस बना दिया और वहाँ पे कोई शख्स आई नहीं।
तो आप समझते हैं कि ये एक बहुत कमी है जो वहाँ की यूनिवर्सिटियों में है कि वो तालिबे इल्मों को काउंसलिंग का बाकायदा तौर पर जिस तरह यहाँ पर मौका फराहम किया जाता है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, और अगर उनको ये मौके मिल जाएं तो उनकी तालीमी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है और वो आगे भी बड़ी कामयाबी से बढ़ सकते हैं। बेहद शुक्रिया आपका मुबीनुल इस्लाम। हमारे प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हमारे प्रोड्यूसर थी गुलरुख और इंजीनियर थे सुलेमान। और हम अपने सुनने वालों को बता दें एक बार फिर कि आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान कौन थे। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान थे एक नौजवान पाकिस्तानी वीडियो और फोटोग्राफर और सिविक पाकिस्तान मूवमेंट चेंज थ्रू डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव के फाउंडर मुबीनुल इस्लाम। हमारे मेहमान मुबीनुल इस्लाम को हाल ही में ग्लोबल यूथ फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल हुआ है और वो हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाले इंटरनेशनल यंग लीडर्स असेंबली के सालाना प्रोग्राम में भी एक पाकिस्तानी यूथ फेलो के तौर पर शिरकत कर चुके हैं। बैरिया नेवल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मीडिया स्टडीज एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन के बाद यहाँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया के नोवा कॉलेज में फोटोग्राफी के शोबे के एक इंटरनेशनल तालिबे इल्म मुबीनुल इस्लाम सिविक पाकिस्तान की अपनी टीम के साथ मिलकर म्यूजिक वीडियोस के साथ साथ खवातीन के हुकूक, घरेलू तशद्दुद और दहशतगर्दी के मसाइल पर मुतअद्दिद मुख्तसर दस्तावेजी फिल्में तैयार और पोस्ट कर चुके हैं। हमारे मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahainzindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjamilvoaurdu। ہمارے مہمان مبین الاسلام موجود تھے امریکی ریاست ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے